ओम शांति। बाबा का हर बच्चा विशेष है, चुना हुआ रत्न है, और इसीलिए सभी के अंदर कोई न कोई ईश्वरीय वरदान जरूर है, जो आप सभी भी अपने जीवन में अनुभव करते होंगे। ऐसे ही बाबा का एक वरदान जो हमारे जीवन में भी है, और उस वरदान के आधार पर ही ये एक वरदानी जीवन है। बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान के विभिन्न पॉइंट्स दी है, और हमेशा बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे ये ज्ञान के रत्नों से खेलते रहो, विचार सागर मंथन करते रहो, तो कोई भी प्रकार का व्यर्थ चिंतन मन के अंदर नहीं चलेगा। व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे और सदा ही खुशियों का अनुभव करेंगे। इसी प्रकार हमने भी जीवन के अंदर बाबा की दी हुई ज्ञान की बातों को किसी न किसी रूप से उसको खेलते हुए कुछ बाबा के नए नए अनुभव करने को मिलते हैं। ऐसा ही एक पॉइंट मेरे मन में कुछ समय से चल रहा था, और उस पर जो बातें मन के अंदर आई, आज आप सबके साथ उसी बात को शेयर करना चाहती हूं। तो विचार चल रहा था कि हमेशा बाबा संगम योगी ये ब्राह्मण जीवन की महत्ता बहुत बताते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी है ये भी समय प्रति समय अलग अलग मुरलियों में हमें सुनाते हैं, ताकि हम बच्चों को अंदर में एक नशा रहे, और उस नशे के साथ हर दिन हमारा इस पुरानी दुनिया के अंदर होते हुए भी संगम युग का सुख हम भोग सके, बाप दादा के साथ का एक एक पल सुखमय जीवन का अनुभव कर सके। तो विचार चला कि ये संगम योगी ब्राह्मण जीवन जो है, उसको कल्प का पहला जन्म कहेंगे या अंतिम जन्म कहेंगे, क्या कहेंगे, पहला जन्म है या अंतिम जन्म है? हाँ? पहला जन्म है ना, ये कल्प का पहला जन्म है। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चे जीते जी मर गए, पुरानी दुनिया से मर गए और ये पहले जन्म में आ गए। तो पहले जन्म में हमारा कोई भी पुराना हिसाब किताब वाला खाता हो सकता है या नहीं? हो सकता है। पुराना कोई हिसाब किताब वाला खाता बाकी हो सकता है? जैसे दुनिया में भी लोग नया साल आरंभ होता ही नए चौपड़े, पुराना जितना भी है उसको चुकतू करके नए चौपड़े आरंभ करते हैं। पुराना कोई भी कैरिड फॉरवर्ड नहीं होता है, उसको पहले चुका देते हैं और फिर नए चौपड़े आरंभ करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार अगर कल्प का 5000 साल के कल्प का हमारा ये पहला जन्म है, तो हमारा कोई पुराना चौपड़ा हो सकता है? हो सकता है या नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है। اسی لیے جب تک پرانا چوپڑا ختم نہیں ہوا تب تک برہمن بن نہیں سکتے. آپ لوگوں کو شاید گیان کئی بار ملا ہوگا, بچپن میں ملا ہو, کمار اوستھا میں بھی اپنے پردرشنی دیکھی ہو, کماری اوستھا میں بھی پردرشنی دیکھی ہو, لیکن کیونکہ آپ کا پرانا چوپڑے کا حساب کتاب باقی تھا تو اس سمے گیان بدھی کے اندر بیٹھتا نہیں ہے. لیکن جب پرانا سارا حساب کتاب سماپت ہوا تب برہمن بنتے ہیں. برہمنوں کے لیے پرانا حساب کتاب کوئی ہوتا نہیں, اس لیے بابا کہتے ہیں تمہارا یہ نیا جنم ہے, پہلا جنم ہے. تب پھر کئی بار من کے اندر سوال آتے ہیں, پھر برہمن جنم میں کئی پرکار کی بیماری آتی ہے, تکلیفیں ہوتی ہے, کئی پرکار کی باتیں آتی ہے, اس کو ہم کیا سمجھیں؟ تو یہ حساب کتاب ہے نہیں, لیکن یہ جو کچھ بھی برہمن جیون میں ہو رہا ہے یہ سب پیپر ہے. پیپر ہمیں دینا ہی پڑتا ہے, کیونکہ بنا پیپر دیے ہم سمپورن نہیں بن سکتے. اسی لیے بچہ جیسے اسکول میں آگے بڑھنے کے لیے یونٹ ٹیسٹ بھی دینی پڑتی ہے, تو بیچ والی ٹیسٹ بھی دینی پڑتی ہے, تو فائنل ایگزام بھی دیتے ہیں. ٹھیک اسی پرکار ہمارا بھی یہ پہلا جنم ہے, اور اس کے بعد کا جو جنم ہے ہمارا وہ ستیوگ اور تریتا یوگ میں ہونا ہے, اور ستیوگ کے اندر سولے کلا سمپورن سمپورن نروکاری مریادا پروشوتم سرو گن سمپن. تو یہ ٹائٹل تبھی ملے گا جو سرو گن سمپن کہا, تو ہر گن ہمارے میں کتنا کہاں تک آیا ہے تو ہر گن کا پیپر ضرور دینا پڑے گا. کبھی دھیرتا کا پیپر دینا پڑتا ہے, کبھی مدھورتا کا پیپر دینا پڑتا ہے, اور اگر وہ پیپر میں فیل ہوتے رہے تو بار بار وہ پیپر آتا رہے گا, کیونکہ تبھی جب تک وہ گن وہ شکتی ہمارے اندر سمپورن ریتی سے نہیں آ جاتی ہے تب تک ہمیں وہ پیپر دینا پڑتا ہے. اسی لیے بابا ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی اس برہمن جیون میں ہوتا ہے یہ ایک ایک گن کا پیپر ہے, ایک ایک شکتیاں کتنی دھارن ہوئی ہے اس کا پیپر ہے. جتنا جلدی اس گن کو محسوس کرتے ہوئے دھارن کر لیں گے تو جلدی پیپر میں پاس ہوتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں گے. تو پیپر تو دینا ہی پڑے گا, نہیں تو سرو گن سمپن کیسے بنیں گے. مریادا پروشوتم, تو ساری برہمن جیون کی مریادائیں ہیں, یہ مریاداؤں کا بھی پیپر تو آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تب تک سورگ میں جانے کا پاسپورٹ ہمیں پراپت نہیں ہوتا ہے. اسی لیے کئی بار کئی لوگ کہتے ہیں کہ برہمن بننے کے بعد تو اتنی پریکشائیں آتی ہے, پہلے بھکتی مارگ میں تو اتنی پریکشا نہیں آتی تھی. بھکتی مارگ میں کیسے آئیں گی پریکشا, وہاں کوئی جیون بنانے والی بات تھوڑی ہے. یہاں تو ہمیں سورگ کا راجیہ بھاگیہ کا ادھیکار پراپت ہو رہا ہے, تو وہ راجیہ بھاگیہ کا ادھیکار سبھی کلاؤں میں سمپن ضروری ہے. تب تک تو وہاں جا نہیں سکتے ہیں, اور بابا نہیں چاہتا ہے کہ میرا کوئی بھی بچہ بھائی سورگ کا پہلا جنم سے سکھ بھوگے نہیں. اسی لیے ہمیں جو ورثہ ملتا ہے اس ورثے کو بھی ہم کہتے 21 جنم کا ورثہ. تو ستیوگ کے 8 جنم, تریتا یوگ کے 12 جنم, 20 جنم اور سنگم یوگ کا یہ جنم بھی یہاں سے ہمیں ورثہ پراپت ہوتا ہے. तो जब बाबा कुछ देना चाहता है, जब बाबा हमारे अंदर वो योग्यता भरना चाहता है, तो वो योग्यता जो भरी है उसके लिए टेस्ट तो देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी। इसीलिए जितनी मर्यादाएं, गुण, शक्तियां, कलाएं हम भरते जाते हैं, उतना हम सर्व गुण संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। अगर कम हुए तो त्रेता युग का राज्य भाग्य प्राप्त होगा। इसीलिए बाबा कहते हैं, हर बच्चे को जब पूछते हैं कि लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हो या राम सीता बनना चाहते हो, तो हर एक क्या कहता है, लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हैं। और लक्ष्मी नारायण बनना हो तो इतने योग्यताएं, पात्रता ऐसी हमारी ये संगम युग के पहले जन्म में ही बनती है। इसीलिए इतने टेस्ट पेपर हमारे सामने आते हैं। तो अभी आज के बाद ये माइंडसेट को एक्सचेंज कर देना है। जो लोग कहते हैं हिसाब किताब, पता नहीं कैसे मेरे हिसाब किताब है, अब जो लोग ये कहते हैं मेरे हिसाब किताब है, तो पुरुषार्थ करने का उमंग उत्साह समाप्त हो जाता है, क्योंकि हिसाब किताब करके उसको स्वीकार कर लिया तो पुरुषार्थ करने का जो उमंग आता है वो समाप्त हो जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि आज के बाद ये थिंकिंग चेंज करनी है। ब्राह्मणों का हिसाब किताब कोई है ही नहीं, ये फर्स्ट जन्म है और ये फर्स्ट जन्म में हमें पेपर देना है। जब पेपर है तो पास होने के लिए दृढ़ संकल्पधारी बन जाएंगे और पुरुषार्थ करके, तीव्र पुरुषार्थ करके आगे बढ़ने का एक उमंग आएगा। इसलिए आज से कभी ये नहीं कहना मेरा हिसाब किताब। जब कोई व्यक्ति हिसाब किताब कहता है तो कर्म कूटता है, और कर्म कूटता है तो दुख की अनुभूति होती है। लेकिन जब उसको पेपर समझते हैं और पार करते हैं तो पेपर माना ही, पास होना ही है मुझे, ये दृढ़ संकल्पधारी बन जाते हैं। कई बार ब्राह्मणों की ये शिकायत रहती है, मधुबन आते हैं, हम दृढ़ संकल्प करते हैं, लेकिन बाद में वो दृढ़ संकल्प कहाँ चला जाता है, पता ही नहीं चलता है, क्यों ढीला हो जाता है। उसका कारण ये है कि हिसाब किताब समझना चालू किया इसीलिए, और जहां हिसाब किताब के रूप में उसको स्वीकार कर लिया तो फेल तो होना ही है, और इसीलिए दृढ़ संकल्पधारी बन नहीं सकते हैं। जैसे जब आप ब्राह्मण बने उदाहरण के रूप में, और जब से आपने बाबा के ज्ञान को समझा, मेरा बाबा है ये निश्चय हुआ, तो ये निश्चय होते ही ब्राह्मण जीवन की मर्यादाओं को आपने पालन करना जरूरी समझा। पवित्रता की धारणा हो, खान पान की धारणा हो, कि आज के बाद मुझे प्याज लहसुन नहीं खाना है, तो जैसे ही उस जीवन की वैल्यू समझी तो दृढ़ संकल्प आपने लिया कि मुझे प्याज लहसुन नहीं खाना है। उसके बाद जब आप रिश्तेदारियों में जाते हैं और कोई आपको फोर्स करता है खाने के लिए, तो उस वक्त आप क्या समझते हैं, मेरा हिसाब किताब है, चलो खा लो, करते हैं ऐसा? नहीं, उस समय मन के अंदर पहला विचार यही आता है, ये पेपर है मेरे लिए, कि मैंने जो संकल्प लिया है उस पर मैं कितना दृढ़ हूं। तो कोई कितना भी आपको खाने के लिए फोर्स करे तो भी आप खाते हैं नहीं खाते हैं? पवित्रता की धारणा जैसे ही आपने लिया, उसके बाद कोई कितना भी तोड़ने के लिए आपको मजबूर करे, आप तोड़ेंगे नहीं तोड़ते हैं? और दृढ़ संकल्प, और जैसे ही उसको पास कर लेते हैं और वो व्यक्ति भी कन्विंस हो जाता है कि हाँ ये बहुत ऊंची बात है जो आपने धारणा मर्यादाएं अपने जीवन में ली है, जैसे ही वो व्यक्ति भी कन्विंस हो जाता है और वो आपको फोर्स नहीं करता है, तो आप विजय की खुशी का अनुभव करते हैं या नहीं करते कि विजयी हो गए। इसी तरह हर मर्यादा को आपने जब भी जीवन में दृढ़ संकल्प करके धारण किया, कितना भी पेपर सितम आपके ऊपर आए तो भी उस वक्त हिसाब किताब नहीं समझते हैं, लेकिन उस समय यही समझते हैं बस इसको पार जरूर करना है और विजयी भव होना ही है। और जब वो विजयी भव होते हैं तो कितनी खुशी अंदर में रहती है। ठीक इसी प्रकार जो छोटे छोटे गुणों के बारे में दृढ़ संकल्प करना है तो उसके लिए भी ऐसे ही दृढ़ संकल्प करना है। अगर बड़ी बड़ी बातों के लिए, बड़ी बड़ी धारणाओं के लिए हम दृढ़ संकल्प करके पास हो गए तो छोटे छोटे गुणों के लिए हम पास नहीं हो सकते। मधुरतापूर्ण व्यवहार, धैर्यता वाला व्यवहार, उसको पास नहीं कर सकते। तब क्यों कहते हैं क्या करें, मेरा हिसाब किताब है, मुझे गुस्सा आ जाता है। अगर पवित्रता जैसी बात को आपने जीवन के अंदर धारण कर लिया तो क्रोध उसके आगे क्या है। वो महाशत्रु के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया तो क्रोध क्या चीज है। तो उस समय क्रोध के वशीभूत क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि ये हिसाब किताब है। उसने गुस्सा किया, मैं क्यों सुनता रहूं, मैं भी गुस्सा कर लिया। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे अगर कोई गुस्सा करते हैं तो उसको जवाब देने के बजाय आप मुख में मुलहरा डाल दो, शांत हो जाओ, उसकी बातों का प्रतिउत्तर नहीं दो किसी भी तरह से, तब कहेंगे कि हाँ आपने उसके ऊपर विजय पाया। नहीं तो अधीनता ही बनी रहेंगी, सर्व गुण संपन्न कभी नहीं बनेंगे। अच्छा उसके बाद कई चीज ऐसी दिखाई देती है जैसे ये हिसाब किताब है। हिसाब किताब पिछला नहीं है, लेकिन इस जन्म में जो पेपर नहीं समझता है और उसको लेकर के जो कहीं गलत काम कर लेते हैं, भाई किसी ने गुस्सा किया तो हमने भी गुस्सा कर दिया, किसी ने उल्टा सीधा बोला हमने भी उसको जवाब दे दिया। अब ये जो जवाब दे दिया, उसको पेपर समझ के पास नहीं किया, तो ये नया हिसाब किताब इस जन्म में बनता है। अब जो बनता है आगे सत्युग और त्रेतायुग है, जहां चुकतू तो करना नहीं है। तो ब्राह्मण जन्म में जो भी विकर्म किया उसको कहां चुकतू करेंगे, उसको कहां चुकतू करेंगे, यही करना पड़ेगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं मुख में मुलहरा डाल दो, ताकि आपका बने नहीं अकाउंट, क्योंकि अगर बना दिया और फेल हो गए तो ये जो हिसाब किताब नया बनाया इस जन्म में उसको तो चुकतू करना ही पड़ेगा, और यही चुकतू करना पड़ेगा। वो चुकतू करने के लिए आगे कोई जन्म नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं छोटे छोटे जो विकर्म बहुत हो जाते हैं जिस कारण व्यर्थ संकल्प चलते हैं, पहली सजा क्या होती है भोगना की, जो हमने नए हिसाब किताब इस जन्म में क्रिएट किए तो उसकी पहली सजा क्या होती है, हमारी खुशी गायब हो जाती है, व्यर्थ संकल्प चलना शुरू हो जाता है, योग नहीं लगता है। ये सजा है उसकी, जो हिसाब किताब हमने बनाया नया उसको और कहीं नहीं, उसको यहीं चुकतू करना पड़ता है। इसीलिए बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन की वैल्यू को समझो, यहां और क्रिएट नहीं करो। अच्छा कुछ विकर्म ऐसे हो जाते हैं ब्राह्मण जन्म में भी जो इस जन्म में चुकतू नहीं हो पाते। पाते। तो वो कर्म क्या होता है? वो कर्म संचित रूप में आत्मा में मर्ज हो जाते हैं, संचित रूप में। क्योंकि सत्युग और त्रेता युग में तो जाना नहीं है, उस कर्म का हिसाब किताब भोगना नहीं है। तो वो जो संचित रूप में अंदर में चले गए, उसको जैसे हमने दुनिया में भी कई अमाउंट जो है हम फिक्स में डाल देते हैं, और फिक्स अकाउंट में डाल दिया, बैंक में भी फिक्स अकाउंट खोल दिया, तो फिक्स कितने साल में डबल होता है? फिक्स में डाला हुआ पैसा कितने साल में डबल होता है? 4-5 साल के अंदर डबल हो जाता है ना, 5-6 साल में डबल हो जाता है। तो अब ये जो विकर्म कुछ ऐसे बड़े हैं, जिसको हमने संचित रूप में आत्मा में भर दिया, अब वो मर्ज हो गए, फिक्स में चले गए, एफडी बन गई उसकी। अब ये एफडी कहां खुलेगी? द्वापर युग में खुलेगी। तो 2,500 साल का इंटरेस्ट कितना होगा बताओ? 2,500 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा ना, कि नहीं देना? एफडी जो बना दी उसकी, और इसलिए 2,500 साल का इंटरेस्ट अगर 5 साल में भी डबल होता है यहां पर, तो 2,500 साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो कितना होता है, कितना ज्यादा होता है। इसीलिए बाबा ने पिछले साल संगम युग की एक एक घड़ी की वैल्यू बताई, और बाबा ने कहा एक का पदम गुना, एक का पदम गुना, डबल भी नहीं, पदम गुना उसकी भोगना भोगनी पड़ेगी। तो यहां भोगनी नहीं भोगनी पड़ेगी, लेकिन जब वो एफडी खुलती है द्वापर युग में, किसी की कलयुग में खुलती है, तो और ज्यादा है ना। इसीलिए आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि द्वापर युग में जो कुछ राजाएं ऐसे हुए, इतने दुष्ट राजाएं होते थे, जो छोटी सी गलती अगर प्रजा से हो गई तो उसके ऊपर कोड़े बरसाते थे, चमड़ी उधेड़ते थे। कई लोग तो निर्दोष होते थे, लेकिन फिर भी उसकी चमड़ी उधेड़ी जाती थी। अब द्वापर युग में आते ही उसने कौन सा कर्म ऐसा इतना कड़ा किया जो चमड़ी उधारने वाली, ये कोड़े बरसाने वाला उसको भोगना भोगनी पड़ी। ये एफडी खुली, ये एफडी खुली। इसीलिए हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि हिटलर जैसे लोग थे, जो कितना लोगों को गैस के चैम्बर में बंद करके तड़पा तड़पा करके मारा है उसने। अब उन्होंने कौन से कर्म किए? कई लोग हमसे पूछते, उन्होंने द्वापर में आते ही ऐसा कौन सा कर्म किया जो इतना उनको तड़पा तड़पा करके मरना पड़ा? ये सारी उनकी एफडी खुली, क्योंकि जो द्वापर में फ्रेश आत्माएं उतरती है उसको भोगना नहीं है। इसीलिए शास्त्रों में जो लिखा है कि धर्म राजपुरी की यातना भोगतनी पड़ती है, कोड़े बरसेंगे, चमड़ी उधड़ेंगी, ये कहां उधड़ेंगी? ऊपर तो कोई धर्म राजपुरी है नहीं। लेकिन जिसने अपनी एफडी बनाई, वो एफडी बनते ही धर्मराजपुरी में ट्रिब्यूनल बैठेगी, ठप्पा लग गया उसने ये कर्म किया, उसकी एफडी बना दो। और फिर वो जाकर कहां खुलने वाली है? बाकी धर्मराजपुरी में तो कोई सजा नहीं मिलती है। हाँ, बाबा धर्मराज बन करके उसको ठप्पा मार देता है, फिर जो है ट्रिब्यूनल जो बैठेगी उसके हिसाब से वो ठप्पा लग जाता है, जिससे कोई नहीं छूट सकता है। इसीलिए वो जब द्वापर युग में आते हैं, और द्वापर युग के बाद जैसे जैसे उनकी एफडी खुलने लगती है, तो वो अनुभव होता है। इसीलिए बाबा कहते एक का पदम गुना, एक ऐसा विकर्म ब्राह्मण जन्म में होने के बाद भी अगर किए तो उसका पदम गुना भोगने का अनुभव होगा। कई लोग पूछते थे सत्युग में चले जाएंगे फिर पदम गुना कैसे भोगेंगे, ऐसे कई लोगों के कुछ सवाल जो आए थे उन सवालों को लेकर के मन में ये प्रश्न का विचार सागर मंथन चला। तो उस समय ये बात महसूस हुई कि सचमुच बाबा ने जो कहा एक का पदम गुना, तो एक का पदम गुना कैसे बनता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि इतना तीव्र पुरुषार्थ करो, इतना ज्वाला स्वरूप योग का अनुभव करो जो वो एफडी को यहीं जला दो। अगर यहीं उसको जला देंगे तो द्वापर के बाद वो खुलेगी नहीं, इसलिए या तो जला दो उसको, इतना पावरफुल योग का अभ्यास करके। कल भी बाबा ने इसीलिए कहा बच्चे 5-5 मिनट बीच बीच में ये अभ्यास करो, अंतिम समय ये अभ्यास काम आएगा, क्योंकि व्यर्थ संकल्प चलने के लिए निमित्त नहीं बनेगा, इसलिए उसको जला दो। ये अभ्यास हमें ऐसा काम में आएगा जो उस एफडी को जब जला देंगे एक सेकंड में, लेकिन बीज रूप अवस्था में अगर चले गए तो बीज रूप अवस्था में जाकर के जो ज्वाला स्वरूप योग का, भले वो एक सेकंड का ही अनुभव क्यों न हो, लेकिन एक सेकंड का अनुभव भी ऐसा होगा जैसे कई एफडीओ को जला दिया। तो या तो योग को इतना पावरफुल बनाओ ताकि हम एफडी को यहीं जला सके, क्योंकि अगर ये साथ में चली तो उसकी भोगना तो पदम गुना होकर के ही प्राप्त होगी। ये परिस्थिति या परीक्षाओं को पास करने की जो विधि बाबा ने बताई, कौन सी विधि बताई, बहुत सुंदर और सिंपल विधि बताई है कि बच्चे जब भी कोई पेपर आए मुख में मुलहरा डाल दो और अंदर में यही संकल्प करो पास करना है, पास होना है और पास रहना है। ये पास शब्द को स्मृति में रखो और जैसे ही पास शब्द को स्मृति में रखेंगे तो कोई भी बात आएंगी, पेपर आएंगे तो उसको पास करना आसान हो जाएगा। यही अंदर में रखो, बाबा के पास रहना है, बुद्धि से बाबा के पास जाके रहना है। ये पेपर आया है उसको पास करना है और पास होना ही है, दृढ़ संकल्प उसमें कि हमें पास होना ही है। जब ये पास शब्द अंदर में याद रहा तब पास विथ ऑनर्स, पास विथ ऑनर्स हो जाएंगे। और इसीलिए पेपर हरेक ने पास किया, ब्रह्मा बाबा से लेकर के बड़ी दादियों से लेकर के सबने पेपर पास, लेकिन उन्होंने कभी हिसाब किताब नहीं समझा, उन्होंने हमेशा उसको पेपर समझा, इसलिए पास करना आसान हो गया। ब्रह्मा बाबा के सामने भी पेपर आया, हॉस्पिटल में जाना पड़ा, ऑपरेशन भी बाबा पर हुए और जब बाबा पर ऑपरेशन हुआ तो बाबा जैसे ही सुबह डॉक्टर आते थे बाबा उठ करके बैठे होते थे और बाबा उनसे पूछते थे डॉक्टर को, बच्चे ठीक हो, बच्चे ठीक हो। वो डॉक्टर आश्चर्य खाता था कि पहली बार ऐसा पेशेंट देखा जो हमें पूछता है डॉक्टर को कि बच्चे आप ठीक हो। तो इसका मतलब कि उन्हें वो चीज की भोगना का अनुभव ही नहीं, ऐसे उन्होंने पेपर पास किए। मम्मा के लिए हम सभी जानते हैं कि मम्मा को इतनी बड़ी बीमारी थी लेकिन मम्मा के चेहरे पर दुख दर्द की रेखा तक नहीं होती थी। दादियां अपना अनुभव सुनाती है कि दुख दर्द की रेखा तक नहीं होती थी कैंसर जैसी बीमारी होने के बावजूद भी, अंतिम दिन शरीर छोड़ने वाले दिन कितना दर्द होगा, लेकिन मम्मा ने एक एक को बैठ के अंगूर बांटा और चेहरे पर एक रेखा तक नहीं होती है, इसको कहते हैं पास कर दिया। बड़े से बड़े पेपर को पास कर दिया और पास विथ ऑनर हो गए। इसी तरह गुलजार दादी के जीवन की बात हम सभी जानते हैं कि जब दादी को ऑपरेशन हुआ तो बाबा ने कभी नहीं कहा ये हिसाब किताब है। हॉस्पिटल में भी गए तो भी बाबा ने यही कहा, होली स्थल पर जा रही है, होली स्थल है। और बाबा ने यही कहा, निमित्त ये बीमारी है लेकिन उससे एक नई सेवा का अध्याय खुलना है। और नई सेवा कैसे डॉक्टरों की आरंभ हुई उसके बाद ये सेवा को भी हमने देखा। तो बीमारी तो एक निमित्त कारण था। जब दादी के ऊपर ऑपरेशन हुआ और डॉक्टर अशोक मेहता आते थे, पूछते थे, दादी आप ठीक हो? रात को नींद आई? दादी हमेशा मुस्कुराते हुए यही कहती थी, डॉक्टर साहब आपने तो पता नहीं क्या किया, कोई दर्द नहीं, रात को नींद भी बहुत अच्छी आई और बहुत अच्छा है। ये कौन कह सकता? डॉक्टर ने यही कहा, ये पहला पेशेंट ऐसा है जो कहता है कि डॉक्टर साहब आपने क्या किया हमें पता ही नहीं और नींद बहुत अच्छी आई। नहीं तो साइकोलॉजिकली पेशेंट्स के ऊपर इतना इफेक्ट आता है कोई भी ऑपरेशन का कि दूसरे दिन जैसे ही सुबह डॉक्टर आता है तो वो पेशेंट क्या करता है, अरे डॉक्टर साहब रात भर नींद नहीं आई, गैस हुआ, यहाँ दर्द हुआ, वहां हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, कितनी कंप्लेन होती। लेकिन दादी के मुख से कंप्लेन तक नहीं सुनी, ये है कि पेपर को पास कर दिया। कितना भी बड़ा पेपर हो, कई लोग हमें पूछते हैं कि दादियों के सामने ऐसा हिसाब किताब, उन्होंने ऐसा कौन सा कर्म किया जो हिसाब किताब भोगना पड़, उनके सामने कोई हिसाब किताब है ही नहीं, उनके सामने जो भी है वो पेपर है। बाबा इसीलिए हमेशा कहते रहे कि बच्चे मैं इंजन हूं, जितने भी पेपर आने हैं, तूफान आने हैं, सब मेरे सामने आने हैं, सबसे पहले मुझे अनुभव होता है और आप तक वो तूफान जाते जाते तो उसका असर बहुत कम हो जाता है। बाबा के बाद ये दादियां हैं जिन दादियों ने भी पेपर को अपने ऊपर लिया, ब्राह्मण परिवार तक पहुंचने से पहले उनका कोई हिसाब किताब नहीं है, लेकिन सारे पेपरों को अपने ऊपर लेकर के हमारे सामने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बन गए कि हर पेपर में कैसे उसको पास करना है। दर्द हुआ, ये हुआ, वो, ये फेल होने वाली बात है। तो इसीलिए जब उन्होंने पास किया बड़े से बड़े पेपर को, मुस्कुराते हुए पास किया, कोई भी पेपर उनका फेल नहीं हुआ, कहीं भी उन्होंने गलत व्यवहार किसी के साथ नहीं किया और अपना हिसाब किताब नहीं बनाया, तभी तो ये सतयुग के अंदर जाकर के महाराजा महारानी बनते हैं, ऐसे ही थोड़ी बन जाते। इसी तरह अगर सतयुग के अंदर हम भी लक्ष्मी नारायण के रूप में आना चाहते हैं तो पेपर तो आएगा। जितना आगे होदा लेना चाहते हैं, जितना आगे स्टेटस प्राप्त करना चाहते हैं, बाबा इसीलिए हमेशा कहते कोई आईएएस बनता है तो उसके पेपर वैसे होते हैं। हाँ, जिसको पढ़ना नहीं है, जिसको सर्वेंट बनना है तो उसके सामने कोई पेपर भी नहीं है, लेकिन आईएएस बनना है तो पेपर भी तो वैसा ही होगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बड़े से बड़ा तूफान आता है तब भी आप ये समझो कि ये तोहफा है, मुझे कुछ प्रदान करने आया है, कोई ना कोई सतयुग की योग्यता प्रदान करने के लिए मेरे सामने ये पेपर आया है। तो कितनी भी बड़े से बड़ी बात हो उसको आसानी से पानी पर लकीर या मक्खन से बाल निकल जाता है और वो हमें तकलीफ का अनुभव नहीं कराता, लेकिन जब उस पेपर में पास होते हैं तो खुशी का अनुभव होगा और वो खुशी इतनी अलौकिक होगी, इतनी सुंदर होगी कि वो खुशी का अनुभव करते हुए अंदर में धन्य धन्य महसूस करेंगे, बाबा का हर पल साथ का अनुभव करते हुए जैसे वो पेपर को पास करेंगे। तो ये पेपर जो आना है वो हमें एक एक गुण को संपूर्णता की ओर ले जाने के लिए, एक एक शक्ति, एक एक मर्यादा संपन्न बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ये पेपर आते हैं। बाकी जो कई लोगों की थिंकिंग होती है कि बड़े बड़े दादियों को ये पेपर क्यों आया, मम्मा को ऐसा पेपर क्यों आया, कई लोगों का सवाल होता है, ये हिसाब किताब नहीं है। इसी तरह आपके सामने भी अगर कोई छोटी मोटी बीमारी भी आती है तो उस वक्त यही समझो, जब हमारे बड़े ने उसको पेपर के रूप में पास किया तो ये निमित्त पेपर आया है। मेरी सहन शक्ति कितनी है, ये सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए बाबा ने कहा एक मुरली के अंदर कि बच्चे अष्ट रत्न में आना है तो अष्ट शक्तियां संपन्न बनना है। तो अष्ट रत्न में जिसको आना है, अष्ट शक्ति संपन्न उसको बनना है, तो अष्ट शक्ति संपन्न कैसे बनेंगे? तो एक एक शक्ति का पेपर तो देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? और बड़े से बड़े रूप में उसका पेपर दिया, सहन शक्ति कितनी एक्सट्रीम तक हमारे अंदर हो सकती है, उसका पेपर जब दिया, बाबा की याद में रह करके आत्मअभिमानी स्थिति से जब उस पेपर को पास किया, और जब पास हो जाएंगे वो अष्ट शक्ति आएंगी। इसीलिए ये नहीं कि महारथियों के सामने आती है इसीलिए वो संपूर्ण बन जाते हैं, नहीं, बाबा तभी कहते हैं नंबर कोई भी फिक्स नहीं है, नंबर कोई भी फिक्स नहीं है, खाली पहला और दूसरा ही फिक्स है, बाकी कोई भी नंबर फिक्स नहीं है। और जब बाकी कोई भी नंबर फिक्स नहीं है तो आपके सामने जब पेपर आता है, आप हिसाब किताब बना के FD बना देते हैं, तो बाबा तो नहीं चाहेंगे ना ये बच्चे को कोड़े मिले, तो वहीं से आप फेल होकर के नीचे जाना आरंभ करते। दादियों के सामने इतने बड़े से बड़े पेपर आए लेकिन उन्होंने FD नहीं बनाई, किसी भी पेपर की हिसाब किताब नहीं बनाया, इसीलिए वो संपूर्ण बन गए। और संपूर्ण बन करके उन्होंने अष्ट शक्तियों को संपूर्ण रूप से धारण किया, सहन शक्ति ब्रह्मा बाबा की, सामना करने की शक्ति, निर्णय शक्ति, परख शक्ति, ये सारी शक्तियों का पेपर ब्रह्मा बाबा ने भी एक्सट्रीम रूप में दिए, तभी अष्ट रत्न में आए। इसी तरह ये दादियों के सामने भी जो एक्सट्रीम रूप में ये पेपर आते हैं, ये उनके हिसाब किताब नहीं है। तो आज से हम ये थिंकिंग बदल दे अपने, और अपने लिए भी ये थिंकिंग बदल दे, हमारा भी कोई भी हिसाब किताब नहीं है, क्योंकि हिसाब किताब पूरे हुए तब हम ब्राह्मण बने, ब्राह्मण बनने के बाद हिसाब किताब नहीं, जो कुछ भी आता है जीवन के अंदर ये पेपर बनकर के आता है, और जब पेपर बनकर के आता है तो पेपर को पास करने की साइकोलॉजी या पेपर को पास करने की मनस्थिति हम ऐसी बना ले तो उसको पास करना ही है और पास होना ही है, पास रहना है, तब पास विथ ऑनर्स, जो बाबा कहते हैं पास विथ ऑनर्स, ये सर्टिफिकेट जो मिलेगा, तीन सर्टिफिकेट चाहिए, उसमें भी स्वयं स्वयं से संतुष्ट, पेपर पास करने के बाद भी कोई कंप्लेन नहीं, स्वयं स्वयं से संतुष्ट, दूसरे मेरे से संतुष्ट, और बाबा भी मुझसे संतुष्ट कि हाँ बच्चे ने पेपर पास कर लिया। तो ये तीनों सर्टिफिकेट तभी हमें मिलेंगे और तभी हम जो भी 108 की माला में जाना चाहे, 16108 की माला में जाना चाहे, जो माला में जाना चाहे, वो हमारे ऊपर है। तो इसलिए बड़े से बड़ा पेपर भी आए तो भी निश्चिंत रहो और यही कहो भले आए, क्योंकि ये बड़ा पेपर हमें राजगद्दी के अधिकारी बनाने के योग्य बनाने वाला है। तो बड़े से बड़ा पेपर को स्वीकार करने की एक मानसिक तैयारी हम अपनी ऐसी बना ले जो कोई भी पेपर हमें फेल नहीं कर सके, ना हमें किसी के लिए कोई शिकायत है, ब्राह्मण बनने के बाद उसने ऐसा किया, उसने ऐसा, जिसने जो किया वो जाने, मुझे किसी का शिकायत नहीं करना है और मुझे किसी के बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि सोच करके भी मैं अपना हिसाब किताब बनाना नहीं चाहती हूं। इसीलिए बाबा कहते कि व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो जाओ। कल की मुरली में भी बाबा ने यही हमसे, शिवरात्रि के निमित्त, बर्थडे की गिफ्ट के निमित्त बाबा ने यही दृढ़ संकल्प हमसे कराया कि व्यर्थ संकल्प से स्वयं मुक्त रहो और फॉलो ब्रह्मा बाप की तरह हमें करना है। ब्रह्मा बाबा ने जब इतने पेपर दिए, बाबा को कभी कोई बात से लेकर व्यर्थ संकल्प नहीं आया, कभी कोई बात में शिकायत नहीं हुई, शिव बाबा को कंप्लेन नहीं किया कि बाबा पहले तो मैं इतना इज्जत वाला था समाज के अंदर और आज मेरे सामने इतने पेपर क्यों, बदनामी के पेपर भी आए, सब प्रकार के पेपर आए बाबा के सामने। बाबा ने मुस्कुराते हुए बाबा के कोई फोटो के ऊपर टेंशन की रेखा देखी? इसीलिए बाबा कहते बेफिकर बादशाह, बेफिकर बादशाह के पेपर है, हिसाब किताब है ही नहीं, तो पेपर है तो पेपर में बेफिकर बादशाह बन के कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ो, विल पावर के साथ आगे बढ़ो और उस पेपर को पास करो, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है ना। तो इसीलिए ब्राह्मण जीवन माना कोई हिसाब किताब नहीं, सारे हिसाब किताब पूरे हुए तब हम ब्राह्मण बनते हैं और ब्राह्मण बनने के बाद जो कुछ भी होता है ये पेपर है। हमें नई एफडी बनानी नहीं है, एक का पदम गुना प्राप्त करना नहीं है द्वापर के अंदर जाते ही, नहीं, बहुत सुंदर जीवन जीनी है। तो बाबा कहते हैं कि तुम ब्राह्मणों को जब यथार्थ रीति से जीना आ जाता है, इतना ऊंचा ज्ञान हमें मिला है, यथार्थ रीति से कर्म करना जीना आता है, तो तीन हिस्सा सुख और एक ही हिस्सा दुख का अनुभव करेंगे। तो तीन हिस्सा सुख प्राप्त करने के लिए भगवान ने इतनी बड़ी लॉटरी हमें दी है कि तीन हिस्सा हम सुख भोगे, ये भगवान चाहते हैं। और इसीलिए जब बाबा ऊपर से देखते हैं कि कुछ आत्माएं ब्राह्मण बनने के बाद भी ऐसी एफडियां बना देते हैं, तो बाबा को भी क्या होता है, रहम आता है। इसीलिए बाबा कहते हैं अगर कोई ब्राह्मण भी देखते हैं एक दूसरे को, तो उसको सहयोग दो, शुभ भावना का दान दो, शुभ भावना शुभ कामना का दान देने से, सहयोग देने से हो सकता है कि वो आत्मा भी उस एफडी बनाने के भाव से मुक्त हो जाएंगे। तो इसीलिए एफडी न मुझे बनानी है, अगर किसी को बनाते हुए देखे तो भी क्या करो, उसको शुभ भावना का सहयोग दो, बाबा से सकाश दो कि वो आत्मा भी उससे मुक्त हो जाए। और अगर गलती से कोई बन भी गई हो, तो बाबा ने कल तो बहुत सुंदर अमृत वेले का महत्व बताया कि अमृत वेले इतना पावरफुल योग करके हम वो ज्वाला स्वरूप योग करके वो एफडीओ को क्या करो, जला दो। जितना उसको जला देंगे बस मुक्त हो जाएंगे, खुशी होगी, हम बहुत सुंदर अनुभव करते हुए संगम युग के एक एक पल सुख का अनुभव करते हुए आगे बढ़ेंगे और सदा बेफिकर बादशाह के रूप में आगे बढ़ते हुए मौजों का जीवन अनुभव होगा, मेहनत वाला जीवन नहीं होगा। हिसाब किताब समझते तो मेहनत लगती है, पेपर समझते तो मौज है। और पेपर को भी क्या समझो, पेपर टाइगर है, बाबा कहते कागज का शेर है, वो खाली आया है, अंदर से खोखला है, इसलिए पेपर को भी क्या समझो, पेपर टाइगर है। और पेपर टाइगर समझेंगे तो वो चीज आपको दुख दर्द का एहसास नहीं करा सकती है और बहुत अच्छी तरह से उसको पार करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।